हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। महापिशाचिनी के खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं पाता है, और तुम यहां पर आ तो गए हो, लेकिन यहां से जा नहीं पाओगी जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक। इतना बोलते हुए वो इस तरह हवा में तैरती हुई विलेज की तरफ आगे बढ़ी, और वीरेश चंद्रिका को लिए हुए इस तरह बिना देखे पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए उल्टा चल रहा है। और तभी चंद्रिका को भी होश आया। उसने एक हाथ अपनी आंख पर रखा और अपने हाथों से आंख मारते हुए उसके मुंह से थोड़ी दर्द भरी आवाज निकली, क्योंकि उसके शरीर में जहां जहां पर भी चोटें लगी हुई थी उसे वहां पर दर्द हो रहा था।
आह, हमारा सर, हम इस तरह से घूम क्यों रहे हैं, रुक जाओ।
जब तक उसे समझ आया कि वो किसी की गोद में है, तो वीरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए चंद्रिका बोली, और चंद्रिका को होश में आते देख वीरेश अपनी जगह पर रुक गया। और इसी बीच चारों तरफ से पिशाचिनियों ने आकर उन दोनों को घेर लिया। वीरेश वो सब कुछ देख नहीं पाया, क्योंकि उसका ध्यान चंद्रिका की तरफ हो गया, और उसने चंद्रिका से कहा, ठीक हो तुम, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना चोट में?
हम यहां कैसे आए? हम तो वहां ऊपर पहाड़ी पर थे ना, और तुमने हमें गोद में क्यों उठाया? नीचे उतरो मुझे, हम चल सकते हैं।
बेहोश थी तुम पागल लड़की, इसलिए गोद में उठाना पड़ा। मुझे भी कोई शौक नहीं है इतनी भारी हो तुम। वैसे भी, इतना बोलते हुए वीरेश ने उसे जमीन पर खड़ा कर दिया, और उसके इस तरह अचानक से खड़ा करते ही चंद्रिका एकदम से लड़खड़ाई। वो लगभग कितने ही वाली थी, फिर उसने अपना हाथ वीरस के कंधे पर रख लिया, और दूसरी तरफ से भी किसी ने उसका हाथ पकड़ा, और उसका वो दूसरा हाथ हवा में एकदम ऊपर खड़ा हो गया। और तभी उसकी नज़र उसे तरफ गई, तो उसे हवा में तैरती और मुस्कुराती हुई वो एक औरत नजर आई, जिसे देखकर चंद्रिका की तेज चीख निकल गई, और तेज चिल्लाते हुए को, पीछे हटो, तुम कौन हो, हाथ छोड़ो हमारा। सच में तुम इंसान बहुत ही बुरे होते हो, हम मदद कर रहे हैं और तुम इस तरह से चिल्ला रही हो, जाओ मरो। इतना बोलते हुए उसे पिशाचिनी ने झटक कर चंद्रिका का हाथ छोड़ दिया, और उसके इस तरह झटका देने से चंद्रिका वहां जमीन पर ही लड़खड़ा कर गिर गई। लेकिन पूरी तरह जमीन पर गिर पाती उससे पहले ही वीरेश ने उसे पकड़ लिया, और पिशाचिनी ने हम दोनों को घूर कर देखा और कहा, घर से भागे हुए प्रेमी हो क्या तुम दोनों लोग? तो वैसे ही कुछ रहे हो जैसे तुम दोनों के हालात हैं, लगता नहीं लड़की के घर वाले कभी मानेंगे। और इतना बोलते हुए वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। चंद्रिका को भी वीरेश ने सीधे खड़ा किया, लेकिन वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही है। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वहां पर सिर्फ एक औरत नहीं, उसी के जैसी लगभग 4 से 5 औरतें थीं, और सब उसी तरह के कपड़े पहने हुए, खुले बालों और लाल आंखों के साथ हवा में तैर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, शायद उन दोनों की परिस्थिति पर। वीरेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए चंद्रिका उसके पीछे आकर खड़ी होकर उससे बोली, ये कहाँ फंस गए हैं हम? तो वहां ऊपर पहाड़ी पर थे ना, मैं वहां से नीचे गिरी, और फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ कैसे आए, बताओ मुझे, कौन है ये लोग? चंद्रिका के ऐसे सवालों पर वीरेश उसे ही दांत लगता हुआ बोला, चुप करो तुम चंद्रिका, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। पता नहीं क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह पहाड़ी में इतने किनारे जाकर खड़े होने की, और फिर तुम्हें बढ़ाने की वजह से मुझे भी वहां से नीचे आना पड़ा, और ये सब पिशाचिनियां हैं, मैं गलती से उनके इलाके में आ गया। वीरेश की ये बात सुनते ही चंद्रिका ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोली, तो जो ये तुम्हारी गलती हुई या फिर हमारी, और वैसे भी कौन सा मैं जानबूझकर खुद ही थी वहां से, तुम्हारी वजह से ही गिरी थी। उस वक्त भी मैं, अगर तुम पीछे से आवाज ना लगती तो हमारा ध्यान ना भटकता, तुम्हारी वजह से ही होता है सब कुछ, तुम्हारी वजह से वसुंधरा भी तुम्हारी वजह से ही महल से गायब हुई, और तुम्हारी वजह से ही अभी मुझे मेरी भी जान जाते जाते बची, और अब तुमने फिर से हम एक दूसरे मुसीबत में फंसा दिया है। एक तो मैं तुम्हारी जान बचाई, भला कोई इस तरह से शुक्रिया अदा करता है क्या? तुमसे ज्यादा एहसान फरामोश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, वीरेश ने भी उसे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। आह, चुप करो तुम दोनों, तुम इंसान सच में कितना बोलते हो, बोल बोलकर हम लोगों का दिमाग खराब कर दिया, चलो पकड़ लो इन दोनों को और ले चलो अपने साथ। माँ पिशाचिनी ने इस तरह हवा में लहराकर आगे जाते हुए कहा और अपनी बाकी सारी पिशाचिनियों को आदेश दिया। वो सब उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी वीरेश ने जल्दी से आंख बंद की और तुरंत ही अपने मंत्र पढ़ने लगा, और उसने अपनी दिव्य शक्तियों के इस्तेमाल से एक सुरक्षा घेरा अपने और चंद्रिका के चारों तरफ बनाया, और जैसे ही वो पिशाचिनी आगे आए उनमें से एक भी उन दोनों को छू तक नहीं पाए, और जैसे जैसे वो आगे आए उनके हाथ एकदम जलकर कल पड़ने लगे, तो वो सब तुरंत ही पीछे होगा और चिल्लाकर वहां से दूर भागी।
महापिशाचिनी अब तक के गायब हो चुकी थी, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर पाए और बाकी सब भी चिल्लाते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। और कुछ देर के लिए वीरेश और चंद्रिका की आंखों से ओझल भी हो गई, तो वीरेश ने चंद्रिका का हाथ पकड़ा और तेज आवाज में चिल्लाया, खड़ी क्या हो, भागो यहाँ से। जबकि चंद्रिका बहुत ही हैरानी के साथ आंखें फाड़े हुए वो सारा तमाशा देख रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ अपने जन्म से लेकर आज तक महल में रहकर कभी भी उसे देखने को नहीं मिला है। हाँ, वो काफी सारी बातें और कहानियां सुनती रहती थी और काले साए का एहसास भी उसे अपने पास होता था। यहां तक बगीचे के पास वहां रक्षा कवच से बाहर में भी काले साए उसे मंडराते नजर आते थे, लेकिन ऐसा कुछ पिशाचिनी और हवा में तैरती और थे उसने पहली बार ही देखी है। चंद्रिका उसके बोलने पर भी नहीं भागी, तो वीरेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींचा और जिस दिशा में भी वो जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा, क्योंकि उसे पता था अगर वो पिशाचिनियों के इलाके से बाहर चला गया तो फिर बाहर आकर वो लोग उस पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि सारी ही काली शक्तियों या दिव्य शक्तियां सभी का अपना अपना इलाका होता है जहां पर दूसरी शक्तियां उन पर आकर हमला नहीं कर सकती जब तक वो उनका कोई नियम नहीं तोड़ते या फिर सामने से लड़ने की कोई वजह नहीं देते, और सारी शक्ति अपने ही इलाके में सबसे अधिक ताकतवर होती है। ये सब कुछ वीरेश को अच्छी तरह से पता था, इसलिए अगर उसे जरा सी भी भनक गोटी कि वो पिशाचिनियों का इलाका है तो वो कभी भी उसे तरफ ना जाता। वीरेश के इस तरह से खींचने पर चंद्रिका को भी एहसास हुआ और वो भी तुरंत ही उसके साथ भागी, और वो दोनों वहां से भागते भागते काफी दूर आ गए और बहुत देर तक वो दोनों नहीं रोक, लेकिन अब उनके पैरों में ऐसा लग रहा था जान नहीं बची है और उनकी सांस भी एकदम चढ़ गई थी। वीरेश को तो इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चंद्रिका के चोट भी लगी हुई थी और पिछले दो दिनों से उसने कुछ फल, जंगली फल और नदी के पानी के अलावा कुछ खाया पिया भी नहीं है। उसने पानी ना पीने का प्रण लिया था, लेकिन समर और वीरेश ने समझा बूझकर उसे थोड़ा बहुत खिला दिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी ऊर्जा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दूर तक दौड़ते हुए भाग पाए।
रुक, रुक जाओ, रुक जाओ।
मैं अब और ज्यादा नहीं भाग सकती, नहीं भाग पाऊंगी मैं अब, और यहां से चाहे वो लोग मेरी जान ले लें या फिर जो भी हो। इतना बोलते हुए चंद्रिका वहां जमीन पर ही घुटने के बल बैठ गई। वहां पर जंगल की मिट्टी, सूखे पेड़ पौधे, टहनियां, कंकड़, पत्थर और न जाने कितनी ही चीज थी। इन सब के बारे में भी चंद्रिका ने नहीं सोचा, उसे बस रुक कर सांस लेनी थी और उससे अब खड़े भी नहीं हो रहा था, इसलिए रुकते ही वो तुरंत वहां पर बैठ गई और वीरेश का हाथ भी उसने छोड़ दिया। तो उसके बात सुनकर वीरेश भी थोड़ा सा आगे अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर पीछे मुड़कर उसने चंद्रिका की तरफ देखा। चंद्रिका की हालत इस वक्त बहुत बुरी लग रही है और उसके पैर की चोट में से फिर से खून निकलने लगा है। सर की चोट भी अभी ताजी ही है, इसलिए ही उसे हर जगह पर दर्द महसूस हो रहा है। अपनी सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए चंद्रिका वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठी है और नीचे की तरफ ही देख रही है। चंद्रिका को ऐसी हालत में देखकर वीरेश को उस पर बहुत ही तरस आई और वो भी वहां पर ही रुक गया, क्योंकि वो समझ गया था अब तक वो दोनों वहां से तो काफी दूर निकल आए हैं, इसलिए पिशाचिनियों से तो उन लोगों को यहां पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जंगल और फिर वो गहराती हुई रात, उसे बीच कौन सा नया खतरा कब सामने आकर खड़ा हो जाए ये भी कोई नहीं कह सकता। और वीरेश कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि चंद्रिका भी उसके साथ है, इसलिए वह पूरी तरह से सावधान रहना चाहता है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन बस अपना नकचढ़ापन बीच में मत लेकर आना, वीरेश ने अपना हाथ उसके सामने बढ़ाते हुए कहा। पूरी दुनिया में एक तुम ही इकलौते हो जो हमें नाक चढ़ा बुलाता है, इसके अलावा और सब हमें दयालु और नेक दिल कहते हैं, पता है तुम्हें? नज़र उठाकर वीरेश की तरफ देखते हुए चंद्रिका ने कहा। तो वीरेश ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, हाँ, क्योंकि शायद तुम ये नक चढ़ापन सिर्फ मुझसे ही दिखाती हो और मुझसे ही लड़ाकी भी रहती हो, हमेशा मुझे याद दिलाती हो, मेरी गलती और मेरी वजह से ही राजकुमारी वसुंधरा हमारे साथ नहीं है। वीरेश ने ये बात बहुत ही अफसोस के साथ बोली और उसकी बातों में ही मायूसी साफ झलक रही है, जिसे सुनकर चंद्रिका को भी उसके लिए बुरा लगा, साथ ही अपनी कई बातों को सोचकर भी। इसलिए वीरेश का हाथ पकड़कर उसका सहारा लेते हुए वह किसी तरह से उठकर वीरेश के सामने खड़े हुई। चंद्रिका ने वीरेश से कहा, हमें माफ कर दो अगर हमने कुछ ऐसा बोला हो जिससे तुम्हें बुरा लगा, लेकिन हम तुम्हारी नाकामी तुम्हें याद नहीं दिला रहे थे, हम बस तुमने हमें बोल तो बदले में बोल दिया, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि वो सब कुछ तो पहले से ही होना था, और सच कहे तो पूरी गलती हमारी है क्योंकि विक्रांत वहां पर हमें लेने के लिए आया था लेकिन वसुंधरा को लेकर चला गया,
क्योंकि सबने ऐसी योजना बनाई हुई थी जिसमें वो फंस गया। लेकिन हम ये सोच रहे हैं, जिस वक्त उसे ये समझ आएगा कि वसुंधरा उसके किसी काम की नहीं है, तो कहीं वह उसके साथ कुछ। ये बात बोलते हुए चंद्रिका ने एक गहरी सांस ली तो वीरेश तुरंत ही बोला, नहीं नहीं, मैं वसुंधरा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसे मैं बिल्कुल सही सलामत वापस लेकर आऊंगा और ये मेरा खुद से वादा है। हाँ, उसे कुछ ना हो, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और अगर वसुंधरा को कुछ भी हो, उससे पहले हमारी जान चली जाए। चंद्रिका ने भी बहुत पछतावे के साथ ये बात बोली, क्योंकि उसे भी अब तक इन बातों का बुरा लगता है जो कुछ भी बचपन से लेकर आज तक उसके माता पिता राजा रानी ने किया और जानबूझकर उसको बचाने के लिए वसुंधरा की जान को खतरे में डाला। ये सब कुछ वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। कहानी जारी रहेगी।